नवाध्याय के पहले श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मोवाचा ज्ञातोसि मेऽद्य सुचिरान् ननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिर् इति अवध्यम् नान्यत्वत् अस्ति भगवन् अपि तन्न शुद्धम् माया गुण व्यतिकरात् यत् उरुर्विभासि। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। ओह, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व हैं। ज्ञेय मतलब जानने योग्य, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजन सृष्टि शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान हैं। तात्पर्य, भौतिक शरीरों में बद्ध जीवों की सबसे बड़ी नादानी ये है कि वे विराट जगत के परम कारण से अवगत नहीं होते हैं। परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं, किंतु उनमें से कोई भी यथार्थ नहीं है। एकमात्र परम कारण विष्णु है, किंतु भगवान की मोहिनी शक्ति इसमें आड़े आने वाली बाधा है। भगवान ने भौतिक जगत में अनेकानेक अद्भुत विभ्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। उसी शक्ति से मोहित सारे बदजीव इसलिए उस परम कारण को जानने में असमर्थ हैं। इसलिए बड़े से बड़े विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को अद्भुत नहीं माना जा सका। वे अद्भुत इसलिए लगते हैं क्योंकि वे भगवान की मोहिनी शक्ति के हाथों के खिलौने हैं। मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम के रूप में स्वीकार करते हैं। परम कारण भगवान को उनकी अहेतु की कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है, जो ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्तों तथा उनकी शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। ब्रह्मा जी एकमात्र तपस्या करने से ही गर्भोदक्षायी विष्णु का दर्शन कर सके और उस साक्षात्कार के द्वारा ही वे भगवान को यथारूप में समझ सके। ब्रह्मा जी भगवान के भव्य सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को देखकर अत्यधिक तुष्ट थे और उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे अतुलनीय हैं। एकमात्र तपस्या द्वारा भगवान के सौंदर्य एवं ऐश्वर्य को सराहा जा सकता है और जब कोई व्यक्ति उस सौंदर्य तथा ऐश्वर्य से अवगत हो जाता है तो वह अन्य किसी वस्तु के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद गीता 259 में परम दृष्ट्वा निवर्तते के रूप में हुई है। वे मूर्ख मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते, उन्हें यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा धिक्कारा गया है। यह तो अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ जाता है। भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर तथा ऐश्वर्यमयी है उन जीवों द्वारा भोगी जाती है जो कौवों के तुल्य हैं। कौवे सदैव फेंके हुए कूड़े से चारा चुगने में लगे रहते हैं, किंतु हंस कौवों से मेलजोल नहीं करते। प्रत्युत का मतलब बल्कि वे सुंदर उद्यानों से घिरे कमल के फूलों से युक्त पारदर्शी सरोवरों में आनंद लेते हैं। कौवे तथा हंस दोनों ही जन्म से पक्षी हैं, किंतु उनके स्वभाव एक से नहीं होते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्व पदांतिकम। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ब्रह्मा जी का जन्म हो चुका है और जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कहाँ पर हैं क्या। ये जो कमल का फूल जिस पे वो बैठे हुए थे उसका स्रोत क्या है। हाँ तो ये सिर्फ उनको जल दिख रहा था और कमल का फूल दिख रहा था। तो उन्होंने पानी के अंदर छलांग लगाई और काफ़ी गहराई तक गए हाँ, लेकिन उसका स्रोत नहीं ढूंढ पाए है ना। ये आरोह ज्ञान है कि अपने प्रयास के द्वारा समझने की कोशिश करना। फिर ब्रह्मा जी को प्रेरणा मिली तप करने के लिए, तो उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। और प्रभुपाद 8वें अध्याय में 3रे स्कंद के बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो 1000 चतुर्युगों के बराबर है। और एक चतुर्युग जो है वो 43,20,000 वर्षों के बराबर है। सो 43,20,000 वर्ष गुना 1000 ब्रह्मा जी का एक दिन है, फिर एक रात आएगी। ऐसे ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक जो है तपस्या की और उस तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन कर पाए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन कहाँ किया, तो ब्रह्मा जी अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति दूर से देखेगा तो ऐसे लिखेगा कि ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं आराम से, लेकिन ब्रह्मा जी उस समय अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे थे। हाँ, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। और प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर 8वें अध्याय में कि ब्रह्मा जी ने दर्शन किए भगवान के और उसके बाद उन्होंने ब्रह्म संहिता की रचना की है ना। आपने पढ़ा होगा जरूर इसको। जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए अपने हृदय में, तो वो देख रहे हैं कि भगवान का जो शरीर है वो तीनों लोकों में फैला हुआ है ना। जो नीचे के लोग हैं, मध्यवर्ती लोग हैं और ऊपर के लोग हैं, तीनों जगह भगवान छोटे से हृदय में ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देख लिया। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य शक्ति के द्वारा भगवान असंभव से असंभव कृत्य कर सकते हैं है ना। जैसे जब भगवान मिट्टी खा रहे थे, छोटे से बालक थे, तो यशोदा माई ने कहा मुंह खोल के दिखाओ, तो मिट्टी खा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने मुंह खोला। छोटे से बालक, 2-1 साल का बच्चा, हाँ मुंह खोला तो सारे ब्रह्मांड भगवान कृष्ण के मुंह में दिखाई दिए। हाँ तो कोई सोच सकता है कि ऐसा कैसे संभव है कि एक छोटा सा बालक के छोटे से मुंह में सारे ब्रह्मांड ही दिख रहे हैं। हाँ लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा योग ऐश्वर्य, भगवान अपने योग ऐश्वर्य के द्वारा असंभव को भी संभव बना देते हैं। और प्रभुपाद भागवतम में बताते हैं कि सारे ब्रह्मांड, सारे वैकुंठ जगत जो है वो वृंदावन में एक छोटे से हिस्से में स्थित हैं। तो कैसे स्थित हैं, छोटा सा वृंदावन है, हाँ 84 कोस की परिक्रमा लगाओ सारा कवर हो जाता है, नहीं, उसके अंदर सारे वैकुंठा जगत और वो सारे ब्रह्मांड कैसे स्थित हैं, तो ये भगवान की योग शक्ति है, भगवान का योग ऐश्वर्य है। तो ब्रह्मा जी ने अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान के दर्शन किए, तो एक दफ़ा उनको लगा कि भगवान जो है एक पर्वत की तरह है, हाँ जो हीरे ज्वारात मणियों इत्यादि से सुसज्जित है, आभूषित है, हाँ। फिर उनको लगा ब्रह्मा जी को कि भगवान चंदन के वृक्ष के समान है, हाँ, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और चंदन का जो वृक्ष है, चंदन का वृक्ष की खासियत होती है कि सांप लिपटे रहते हैं उससे, नहीं लिपटत रहत भुजंग, एक दोहा भी है, हाँ, कि जो चंदन है अपनी शीतलता नहीं खोता, चाहे सांप भी लिपटे रहते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी प्रकार भगवान जो है उनके भी शरीर के चारों ओर जो है शेष नाग के फन होते हैं, हाँ। सो इसीलिए ब्रह्मा जी ने भगवान के जो शरीर है, दिव्य शरीर, उसकी तुलना उन्होंने चंदन के वृक्ष के साथ की, है ना। सो एक बहुत ही अद्भुत बात देखी उन्होंने, जब वो भगवान के दर्शन कर रहे थे तो अद्भुत बात उन्होंने क्या देखी कि भगवान के गले में एक फूलों का हार डला हुआ है ना। तो फूलों का हार डला हुआ है तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन अद्भुत बात क्या थी कि वो जो हार था फूलों का, वो भगवान की स्तुति कर रहा था। आप पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है, हाँ। सो वो जो हार है भगवान की स्तुति कर रहा था, भगवान के तरह तरह की भगवान के प्रार्थनाएं कर रहा था, भगवान की महिमा गा रहा था। तो हम सोच सकते हैं कि एक फूल कैसे, मतलब जड़ है, हाँ, फूल कैसे भगवान की महिमा का गुणगान कर सकता है, हाँ। सो प्रभुपाद बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु चेतन है, हाँ, जो जड़ है वो भी चेतन है, वो भी सोच समझ सकती है ना। इसीलिए तो जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए तो सारे जो वहाँ के वृक्ष थे वो आंसू बहा रहे थे भगवान को देख के, कि इतने वर्षों के बाद हमें अपने स्वामी का दोबारा दर्शन हुआ। और वो आंसू किस रूप में गिर रहे थे, शहद के रूप में गिर रहे थे आंसू, है ना। तो जब पेड़ पौधे जब वैकुंठ जगत में जब आंसू बहाते हैं भगवान के प्रेम में विवल होके, तो वो शहद के रूप में गिरते हैं, हाँ, हमारे आंसुओं की तरह खारे नहीं होते वो, हाँ, बिल्कुल शहद होता है वो, हाँ। सो गोपाल चंपू में एक और, गोपाल चंपू में था, सो एक और उदाहरण है कि जब यशोदा माई जो है वो भगवान कृष्ण को स्तनपान करवा रही थी और साथ में दूध भी उन्होंने उबालने के लिए रखा हुआ था। सो दूध जब उबला तो बाहर निकलना शुरू हो गया दूध भगोने से। सो यशोदा माई ने उनको रखा भगवान कृष्ण को नीचे और फटाफट जाके दूध जो है उसको संभाला, उसको अंगीठी से नीचे उतारा। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर टीका में बोल रहे हैं कि वो दूध आखिर उबल के बाहर क्यों निकल गया, उबलता रहता मतलब क्या है, वैकुंठ जगत का दूध है, क्या प्रॉब्लम है, उबलता रहे, भगवान की सेवा हो रही है, हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन दूध को ईर्ष्या हो रही थी। दूध ये सोच रहा था कि अगर भगवान यशोदा माँ से ही संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं उनकी सेवा कैसे करूँगा। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए उबल के बाहर आ गया। हाँ, सो कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु चेतन है। हम अभी समझ नहीं पाएंगे, आचार्यों ने कुछ कुछ हमें संकेत किए हैं, लेकिन अगर हमें पूरी तरह से समझना है तो हमें आध्यात्मिक जगत में जाना ही पड़ेगा। और कुछ चारा नहीं है, है ना। सो जब ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए तो ब्रह्मा जी अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान को देख के बहुत ही संतुष्ट हो गए। हाँ, तो दो चीज़ें एक साथ घट रही हैं। अगर आप इस श्लोक को देखें तो दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं। ब्रह्मा जी संतुष्ट भी हो रहे हैं और साथ में दुखी भी हो रहे हैं। हाँ, आप देखो एक बार दोबारा इसको। सो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आज अनेका अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। ओह, तो यहाँ पर देखो खुश हो रहे हैं कि मैं आपको जान पाया, मैंने आपके दर्शन कर लिए, बहुत संतुष्ट हो रहे हैं। ओह, अब दुखी हो गए एकदम से। हाँ, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हाँ, तो वो संतुष्ट हैं लेकिन साथ में दुखी भी हो रहे हैं। वो दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक वैष्णव का स्वभाव है पर दुख दुखी। तो ब्रह्मा जी ये सोच रहे हैं कि जो सुख मुझे प्राप्त हुआ है, हाँ, वो और लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा, कितना दुर्भाग्य है उनका। हाँ, क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा? क्योंकि लोग भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, है ना। हम कल भी चर्चा कर रहे थे, पश्यन अपि न पश्यति। लोग मंदिर में आते भी हैं जो, तो वो सोचते हैं कि हम भगवान को देख पा रहे हैं, वास्तव में भगवान को देख नहीं पा रहे। और हम भगवान को नहीं देख पा रहे इसका प्रमाण ये है कि हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। अगर हम भगवान को देख पाए, अगर हम भगवान के दर्शन कर लें, तो उसका लक्षण क्या होगा? उसका लक्षण ये होगा कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, हमारे मन में कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी। सो लोग आते हैं भगवान के दर्शन, वैसे तो लोग आते ही नहीं। हाँ, अब हालांकि ये हॉल पूरा भरा हुआ है। हाँ, सारे देवी देवता भगवान का गुणगान सुनने के लिए मौजूद हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। हाँ, लेकिन फिर भी रोहिणी के लोग कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर कहाँ पे लाभ उठा पा रहे हैं इसका। हाँ, ये हॉल पूरा खचाखच भरा होना चाहिए और ये शीशे वीशे सब खोल देने चाहिए ताकि लोग बाहर खड़े होकर भी भगवान की महिमा का गुणगान सुन पाए। ऐसा भी होगा, ये इस्कॉन मंदिर का जो है वो लक्षण है कि जैसे ही जब तक वो मंदिर बन के तैयार होता है इतने सारे भक्त इकट्ठे हो जाते हैं। आप कितना ही बड़ा मंदिर बनाओ वो छोटा ही दिखता है वो मंदिर, है ना। आप कोई सा भी मंदिर देख लो, चाहे आप ईस्ट ऑफ कैलाश का देख लो, पंजाबी बाग देख लो, मायापुर का मंदिर देख लो, छोटा पड़ गया अभी बड़ा बना रहे हैं उसको। उनको ये भी पता होना चाहिए कि जब वो बड़ा मंदिर बना चुकेंगे वो भी छोटा बढ़ जाएगा। सो अभी मूर्त रूप से लोग यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये पूरा मंदिर जो है खचाखच भरा हुआ है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे। हाँ, सभी देवी देवता यहाँ पर बैठे हैं और भगवान का गुणगान सुन रहे हैं। जहाँ पर भी भगवान का गुणगान हुआ वहाँ पे सभी देवी देवता इकट्ठे होते हैं और बहुत ही जो है रुचि से भगवान के बारे में सुनते हैं, क्योंकि उनके स्वामी का गुणगान हो रहा है। हाँ, अगर स्वामी का गुणगान हो तो अच्छा लगता है। अगर कोई स्त्री है उसके पति की प्रशंसा की जाए तो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको अच्छा लगेगा। इसी प्रकार भगवान सबके स्वामी हैं और जब भगवान का गुणगान होता है तो सभी जो भगवान के सेवक हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं भगवान का गुणगान सुनने के लिए। सो ब्रह्मा जी ने ये बहुत ही संतुष्ट हो गए भगवान के दर्शन करके, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही दुखी थे कि दूसरे लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे। तो लोगों को, जीवों को भगवान के दर्शन का अवसर देने के लिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई भगवान के निर्देश में, ताकि लोग अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को त्याग कर, जो कि भोग वासना से प्रेरित हैं, और भगवान की सेवा में जुड़े। अवसर दे रहे हैं उनको कि देखो बहुत हो गया, हाँ आप ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते थे, नहीं हो पाए, तभी प्रलय आ गई और आप ऑटोमेटिकली भोग करते हुए भी भगवान के शरीर में विलीन हो गए और निष्क्रिय अवस्था में अनंत काल तक पड़े रहे। अभी दोबारा से समय आ गया है, आप सब जाग जाओ और उठकर भगवान की सेवा में लग जाओ। क्योंकि लेकिन भगवान तो दिख नहीं रहे हैं, योग माया समाप्तता, तो हम भगवान की सेवा में कैसे लगे, कैसे हम उस संतोष की अनुभूति करें? कि जो संतोष ब्रह्मा जी अनुभव कर रहे हैं, सो भगवान का दर्शन जब होता है तो तीन भाव भक्त के मन में आते हैं। पहला भाव क्या आता है? परम संतुष्टि का। भक्त जो है बहुत ही संतोष का अनुभव करता है। दूसरा भाव आता है दुख का, कि और लोग सब दुखी हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, तो आप सातवें स्कंद में आप भागवतम के देखते हो कि प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के दर्शन कर रहे हैं और साथ साथ में अपना दुख भी व्यक्त कर रहे हैं कि क्या कारण है, कितना दुर्भाग्य है कि लोग आप जैसे परम सुंदर और परम कृपालु भगवान के शरणागत नहीं हो रहे, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं क्या करूं कि सब लोग भगवान के आपके शरणागत हो जाएं, है ना? वासुदेव दत्त हैं, चैतन्य चरितामृत में हम उनका वृतांत पढ़ रहे हैं। वासुदेव दत्त ने तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को यहाँ तक बोल दिया कि जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड के, उनके जितने भी पाप हैं जिसके कारण वो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, आप मुझे दे दो, मैं भोग लूँगा। लेकिन आप इनको भगवत धाम लेके जाओ, वहाँ पर इनको सुख से रहने दो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ इनका दुख, मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपको भोगने की क्या जरूरत है, आपने इच्छा की सो वो पूरा हो जाएगा और जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड के उनका उद्धार आपकी इस इच्छा के कारण निश्चित हो चुका है ना? सो प्रहलाद महाराज को देख लो, जो व्यक्ति कष्ट दे रहा है उनको, मारने की कोशिश कर रहा है, भगवान सामने आए तो भगवान को प्रे कर रहे हैं कि हे भगवान आप प्लीज मेरे पिता की रक्षा करें, उन पर कृपा करें, पर दुखा दुखी। जो आपसे अच्छा है, जो आपके प्रति उदार है, आपका हित करने वाला है, उससे आपने हित किया तो कौन सी बड़ी बात कर दी? प्रशंसा के लायक तो तब आप होंगे जब लोग आपका अहित कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर भी आप उनके हित की बात सोचें, फिर भी आप सोचें कि कैसे मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ, कैसे मैं इनको भगवान की भक्ति में लगा सकता हूँ, वो असली वैष्णव है ना। हम देखते हैं कि जो हमारी जो इस्कॉन संस्था की भी अगर हम बात ले लें, तो यहाँ पर भी बहुत सारे भक्तों के साथ मतभेद हैं। क्यों है वो मतभेद? हाँ, आखिर आप मेरी जगह नहीं आ सकते, मैं आपकी जगह नहीं जा सकता, किस बात का मतभेद है? अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो प्रतिस्पर्धा इस बात की करो कि कौन ज्यादा सेवा करेगा। हाँ, प्रतिस्पर्धा इस बात की नहीं होनी चाहिए कि कौन ज्यादा ताकतवर है, किसके पास ज्यादा सुविधाएं हैं, किसके पास ज्यादा अनुयायी हैं। इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, आपका एक भी अनुयायी नहीं है। सारे लोग श्रील प्रभुपाद ने जितने भी भक्त हैं प्रभुपाद ने भेजे हैं विशेषकर आप पर करुणा करके कि आप उनकी देखभाल करो, उनको भक्ति में लगाओ। हम उनको अपनी संपत्ति नहीं समझ सकते, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपसे चार बार मिल लिया तो आपका गुलाम हो गया, ऐसा नहीं है। हम उनके सेवक हैं, हमारा कर्तव्य है उन भक्तों की सेवा करना। अगर हम ये दृष्टिकोण रखेंगे फिर आपस में मतभेद की बात कहां से आएगी। तो मतभेद का कारण ये है कि हम ये सोचते हैं कि मैं उस भक्त से श्रेष्ठ हूं, ये मूल कारण है। एक बार द्रोणाचार्य ने दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज दोनों से परीक्षा ली और दोनों फेल हो गए। तो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को भेजा, जाओ ढूंढ के आओ क्या तुमसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है इस संसार में, जाओ ढूंढ के आओ। और युधिष्ठिर महाराज को भेजा, जाओ ढूंढ के आओ कि क्या कोई तुमसे छोटा है, क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसमें तुम्हारे से कम गुण है। दोनों फेल हो गए। दुर्योधन ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ नहीं पाया जिसमें कमी नहीं है, वो कमियों के ऊपर ध्यान दे रहा था। कोई व्यक्ति मिलेगा बहुत सारे गुण है, एक कमी है, देखो इसमें एक कमी है, मेरे से घटिया है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज वो देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति में क्या गुण है, अच्छा इसमें यह गुण है। जो कोई छोटे से छोटा भी गुण रहेगा उसको बहुत बड़ा करके देख रहे थे, उसमें यह गुण है। जैसे मल का कीड़ा उसमें क्या गुण है, जो मल में पड़ा हुआ है कीड़ा वो कैसे युधिष्ठिर महाराज ने सोच लिया कि यह मुझसे श्रेष्ठ है। तो वो सोच रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि देखो इस कीड़े में ये ताकत है कि ये मल को खाद बना पा रहा है, लेकिन मुझ में ये ताकत नहीं है, तो कौन श्रेष्ठ हुआ? तो ये मल का जो कीड़ा है ये मुझसे श्रेष्ठ है, है ना। तो जो वैष्णव है, वैष्णव का ये लक्षण है ये सोचना कि हर व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है ना। जगाई मदाई हैते मुई से पापिष्ट, पूरी शेर कीट हैते मुई से लगिष्ट। पूरी शेर मतलब मल, मल के कीड़े से भी मैं निकृष्ट हूं, क्योंकि मल का जो कीड़ा है, जो गंध में पड़ा हुआ है कीड़ा, उसमें भी ताकत है कि एक ऐसा पदार्थ जो किसी के भी काम नहीं आ सकता और लोग दूर भाग रहे हैं, दुर्गंध आ रही है, उसको भी उसने उपयोगी बना दिया, तो हमें यह ताकत नहीं है। तो दोनों गए वापस द्रोणाचार्य के पास और युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन ने बोला कि हमें तो नहीं मिला ऐसा व्यक्ति। तो द्रोणाचार्य ने बोला एक दूसरे को देख लो। नहीं, सो दुर्योधन को समझना चाहिए कि जो युधिष्ठिर महाराज है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, और युधिष्ठिर महाराज ऑब्वियसली दुर्योधन इतने ईर्ष्या से भरा हुआ था, तो वो युधिष्ठिर महाराज से नेचुरली जो है वो कम श्रेष्ठ था। हाँ, सो जो भक्त है वो भक्त अगर हमेशा ये सोचेगा कि मैं बहुत ही नीच हूँ, हाँ, और मुझे पता नहीं क्या ऐसा भगवान ने अहेतु की अनुकंपा कर दी कि मुझ जैसे निकृष्ट व्यक्ति को भी अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया, हाँ, और इतना कृपा भगवान की मिलने के बाद अगर हम दूसरे भक्तों से ईर्ष्या करें तो क्या पॉइंट है। ये इस कौन संस्था जो है ये बद्ध जीवों की संस्था है, मान लिया कि यहाँ पर जो जुड़ रहे हैं वो सब बद्ध जीव हैं, लेकिन वो बद्ध जीव रहते नहीं हैं। श्रीला प्रभुपाद की अनुकंपा से, उनकी कृपा से और पूरी गुरु परंपरा की कृपा से लोग बद्ध जीव के रूप में आते जरूर हैं लेकिन रहते नहीं हैं। और बद्ध जीव ना रहने का जिम्मा केवल गुरु परंपरा के ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर भी है। अगर हम अपना दृष्टिकोण, अगर हम अपनी चेतना, अगर हम अपनी दृष्टि अगर सही रखेंगे, अगर हम हमेशा सेवा भाव में नियुक्त रहेंगे, तो क्यों भगवान की कृपा, गुरु परंपरा की कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी। हाँ, सो प्रश्न ये हमने उठाया था कि ब्रह्मा जी तो संतुष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन किए, साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम तो भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर पा रहे, देख रहे हैं हम भगवान को लेकिन हमें वो अनुभूति नहीं हो रही। तो जो संतोष, जो सुख ब्रह्मा जी को मिला, जो सुख प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और नारद जी इत्यादि अनेक जो भक्त हैं उनको मिला, वो सुख का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? वो सुख का हम अनुभव कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति की शरण लेकर जो भगवान का साक्षात्कार कर चुका है, भगवान की अनुभूति कर चुका है, जो कि श्रील प्रभुपाद है। अगर हम श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों की शरण लेंगे पूरी गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ, तो जो सुख ब्रह्मा जी ने अनुभव किया वो सुख हम भी अनुभव कर पाएंगे। बड़े से बड़ी विपत्ति आएगी भौतिक दृष्टि से, लेकिन आप कभी विचलित नहीं होंगे अगर आपकी निष्ठा, अगर आपकी श्रद्धा गुरु में और श्रील प्रभुपाद में निवेशित है। अगर हम श्रील प्रभुपाद के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहेंगे तो आप देखेंगे आप बड़ी से बड़ी बाधा को ऐसे ही पार कर जाएंगे। हाँ, पंगुम लंघते गिरिम, जो पंगु है, जो लंगड़ा है, लंघते गिरिम, वो पर्वत पार कर सकता है। क्या चाहिए? गुरु पर निष्ठा चाहिए। श्रील प्रभुपाद में अगर हमारी निष्ठा होगी तो अवश्य ही हम उसको पार कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि तीन अनुभव होते हैं जब कोई भक्त भगवान के दर्शन करता है, तो पहला परम संतोष का अनुभव करता है, दूसरा दुख का अनुभव करता है। हाँ, कि दूसरे लोग जो हैं वो क्यों इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, और तीसरा उसको अनुभव होता है कि उसके भगवान के दोबारा दर्शन करने की जो लालसा है, जो इच्छा है, वो अनेक गुना, करोड़ों गुना बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन भगवान बार बार दर्शन नहीं देते। भगवान कहते हैं देखो मैंने आपको दर्शन दे दिए एक बारी, अब आप अपनी इस जो डिजायर है, जो इच्छा है, इसको और बढ़ाओ। जब भगवान ने नारद जी को दर्शन दिए तो नारद जी को भगवान ने बोला देखो मैंने अब तुम्हारे सामने आ गया हूं, दोबारा नहीं आऊंगा विश्वनाथ में। हाँ, तो नारद जी हतोत्साहित नहीं हुए, वो परेशान नहीं हुए नारद जी। हाँ, नारद जी और अधिक प्रयास में जुड़ गए कि कैसे मैं भगवान को अधिक से अधिक संतुष्ट कर पाऊं। हाँ, कैसे मैं भगवान की सेवा कर पाऊं। और फिर उस सेवा के बल पर नारद जी ने ऐसा आध्यात्मिक दिव्य पद प्राप्त कर लिया कि भगवान के कभी भी दर्शन कर सकते थे वो, है ना। कभी भी जाते हैं सोचने मात्र से, सोचा कि मुझे वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने हैं, पहुंच गए। नहीं, कोई टिकट बुक नहीं करानी, कोई प्लानिंग नहीं करनी, सोचा और पहुंच गए, दर्शन कर लिया, बात खत्म हो गई, है ना। सो अगर भगवान दर्शन नहीं देते हैं तो उसके पीछे भी भगवान की जो मंतव्य है, भगवान का उद्देश्य है कि भक्त उनका दर्शन करने की इच्छा को बढ़ाए और अपने गुरु की और अच्छे से सेवा करने का प्रयास करें। ठीक है, सो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न। सो प्रश्न है कि हम भक्ति में लगे हैं, कभी हमें भगवान की कृपा का अनुभव होता है, कभी हमें भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। हमें कई बार लगता है कि भगवान कृपा कर रहे हैं, कई बार लगता है भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? यही प्रश्न है ना। हाँ, सो हमें कई बार भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता हमें, है ना। सो हमें भगवान की कृपा का कई बार अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास वो क्षमता नहीं है भगवान की कृपा का अनुभव करने के लिए। जैसे कुंती महारानी है, कुंती महारानी दुखों में भगवान की कृपा देख रही है, हाँ, वो सुख में भगवान की कृपा कम देख रही है, वो दुखों के अंदर भगवान की कृपा का अनुभव कर रही है। क्यों? क्योंकि वो सोच रही है कि जब हम दुखी थे तो हम भगवान का अधिक स्मरण कर पा रहे थे और भगवान भी बार बार आ रहे थे हमारी रक्षा करने के लिए, है ना। लेकिन अभी हम सुखी हो गए तो भी भगवान के बार बार दर्शन नहीं हो पाएंगे। फिर एक बहुत एक फेमस कहानी भी है कि एक व्यक्ति, भगवान उसके साथ ही चलते थे, उसके फ्रेंड थे, हाँ, तो उसने भगवान को कंप्लेंट की कि देखो कई बार आप साथ रहते हो, कई बार आप साथ नहीं रहते, मुझे अकेलापन लगता है। तो भगवान ने कहा चलो तुम अपनी पीछे की जो जीवन यात्रा है उसको देखो। तो अपनी जीवन यात्रा देख रहा था वो, तो उसको दो जोड़ी पैर दिख रहे थे, तो उसने देखा कई कई जगह एक ही जोड़ी पैर आ रहे हैं, है ना। तो वो वही जगहें थी जहाँ पर उसको कष्ट मिले थे, नहीं आप सबने सुनी होगी ये स्टोरी, नहीं। तो उसने कहा देखो चले गए ना छोड़ के, हाँ जब मैं दुखी था आप चले गए छोड़ के। और कहावत भी है अंधेरे में साया भी साथ छोड़ देते, आप चले गए कौन सी बड़ी बात है। अब भगवान ने कहा ध्यान से देखो ये जो एक जोड़ी पैर है ये मेरे हैं तुम्हारे नहीं है, क्योंकि जब तुम्हें कष्ट आया था तो मैंने तुम्हें गोदी में उठाया हुआ था, है ना। सो भगवान सुहृतम सर्वभूतानाम है, भगवान हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं, है ना। हमें ये एटलीस्ट शुरू में हमें इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बौद्धिक स्तर पे हमें सोचने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं हो सकती कि भगवान हमारे से अलग हो जाएंगे। भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे और भगवान को हमारे साथ रहना मजबूरी भी है क्योंकि भगवान कण कण में विराजमान ही है, हाँ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हमारे साथ नहीं रहेंगे हमेशा, हाँ। लेकिन भगवान देखते हैं, भगवान भक्तों को कष्ट में देखते हैं कि कैसे व्यवहार कर रहा है, क्यों आखिर भक्तों पे कष्ट क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा लगता है कि एक भक्त को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। भक्त को भगवान प्रॉब्लम्स में डालते हैं उसकी महिमा बढ़ाने के लिए। एसी रूम में बैठ के आराम से गद्देदार कुर्सी पे हर कोई अच्छा सोच सकता है, सोच सकता है कि हाँ भगवान ने कितनी सुविधाएं दी हैं, हाँ। लेकिन बहुत कष्ट में अगर कोई व्यक्ति है और तब भी भगवान के प्रति निष्ठा में कमी नहीं आ रही, तो दूसरे लोग देखेंगे, आप सब भक्तों, आपको लोग लगातार देख रहे हैं, आप लोगों को तो लोग देखेंगे, देखो कितने प्रॉब्लम्स हैं उसको, हाँ, लेकिन फिर भी भगवान में निष्ठा में कमी आई नहीं आई, कितना महान भक्त है। तो भगवान भक्तों को कष्ट में डाल के उसकी महिमा बढ़ाते हैं, हाँ, जैसे प्रभुपाद हैं, हाँ, दो हार्ट अटैक हो गए, हम लोग क्या बोलते हैं जब हम लोगों को प्रभुपाद के बारे में बोलते हैं, देखो प्रभुपाद की जेब में कुछ पैसे नहीं थे, दो हार्ट अटैक हुए, फिर भी प्रभुपाद ने इतना प्रचार किया। अगर आप सोचो कि प्रभुपाद के पास 10-20 करोड़ रुपए होते, हाँ, और जाते प्रभुपाद सबको फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते, सोने के कवर चढ़ी हुई, हाँ, और प्रभुपाद लोगों को भक्त बनाते, तो हम क्या बोलते, लोग ये सोचते, हाँ ठीक है पैसे थे कर दिया, क्या बड़ी बात है, है ना। बड़ी बात आज हमें इसलिए लग रही है कि कुछ भी नहीं था, असंभव था। एक 69 साल के वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति के लिए मतलब असंभव था। अवंती ब्राह्मण को जब वो बूढ़ा हो गया था, भगवान ने सारी संपत्ति उसकी हर ली थी अवंती ब्राह्मण की, तो वो अवंती ब्राह्मण कह रहे हैं कि बुढ़ापे में क्यों छीन ली मेरी संपत्ति, जवानी में छीन लेते मैं दोबारा खड़ा हो जाता, बुढ़ापे में आपने छीन ली, अब मैं क्या करूं, कुछ मतलब आपने ऐसी स्थिति में ला के डाल दिया, ना घर का रहा ना घाट का। तो प्रभुपाद 69 साल की उम्र में, मतलब जब लोग आराम के बारे में सोचते हैं, दवाइयों की पोटली बना के पास में रखते हैं, पानी की बोतल पास में रखते हैं कि उठ के भी जाना ना पड़े, जरूरत पड़े निकाल लो और खा लो, बिस्तरे से नीचे भी उतरना नहीं पड़े, ऐसी आयु की अवस्था में भी प्रभुपाद मतलब
हरे कृष्णा।